सतगुरु सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। पतित पावन प्रभ तेरो नाओ, पूरब कर्म लिखे गुण गाओ। साधु संग होए उद्धार, शोभा पावे प्रभ के द्वार। सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तुर बाचो सब सुन नर देवा। नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उद्रिया सगल जहान। श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुख दाता। ऐसा प्रभ छोड़ करे उन सेवा, कौन भिक्षा रस माता। रे मन मेरे तू गोविंद बाज, अवर उपाव सगल मैं देखे। जो चितवीए तित बिगरस काज, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे। मनमुख अंदर ज्ञान, हर की भगत करे नित निंदे। नी गुरे पशु समाना, जो पिंड तन तन सब प्रभ का। साकत कहते मेरा, ऐ मुद्दुर मत है मैली, बिन गुरु पौजल फेरा। ओम जग जब तब सब संजम, तट तीरथ नहीं पाया। मिटिया पे सन्नाई, गुरमुख नानक जगत तराया। निकट बुझे सो बुरा क्यों करे, बिख संचे नित डरता फिरे। है निकटे अर भेद न पाया, बिन सतगुर सब मोही माया। नेड़े नेड़े सबको कहे, गुरमुख वेद विरला को लहे। निकट न देखे पर गिरे जाई, दर्भ हीरे मिथ्या कर खाई। पई ठगोरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम बुलाया। निकट न जाने बोले को, माया मोह मुठ्ठा है मूल। अंतर वस्तन से अंतर जाई, बाज गुरु है परम बुलाई। जिस मस्तक कर्म लिखिया लीला, सतगुरु सेवे खुले कपाट। अंतर बार निकटे सोई, जन नानक आवे ना जावे कोई।
सतगुरु नमे, श्री गुरुदेव नमे। दास तुनु हाथ जोड़ के संगत दे चरणा च मथा टेकदे होए अपने गुनाह की माफी लई अरदास बेनती करदा है। संगत की समर्था है बख्शन की कृपालता करो। संगत के बख्शे गुरु साहब भी बख्श देंगे।
सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए।
सतगुर सेव सतगुर दी सेवा करो, फल मिलेगा। कैसा फल? जन्म मरण की मल, जन्म और मरण। अनंत काल तो ये जीवात्मा जदों भी ये मनुखे जन्म दे विच आंदी है, ये कुछ ना कुछ क्रिया करती है। बाकी दे 84 लाख जामिया दे विच ये जो कुछ भी करती है उसका कोई भुगतान नहीं है। वो तो पिछले जन्मा दे विच जदों भी ये इंसानी जामिया दे विच आई सी और इसने जिस भी क्रिया नू अपनाया सी, कामना और इच्छा दे तहत, यानी कि मनुखे जन्म दे विच कोई भी क्रिया कितनी भी सूक्ष्म होवे, ख्याल रूप दे विच भी होवे, अगर उस दे विच कामना है, इच्छा है, तो याद रखना इसका भुगतान भी है, इसकी कीमत भी है। कीमत दिते बिना इस जगत तो किसी नू आज तक कुछ नहीं मिलिया। बेशक उस काल दी रचना है, उस दे अवतार अपने रूप ही क्यों ना हो, भगवान श्री रामचंद्र जी आए सन त्रेते युग दे विच, उन्हां ने बाली नूं छुप के तीर मारिया सी। बाली ने जिसले चोला छड़िया उसने एक ही सवाल किया सी, हे राम मैं तेरा की बिगाड़िया सी जे तू मैनू छुप करके मारिया, इसका तैनू हिसाब देना पेगा। द्वापर दे विच जदों ओही ताकत काल दी विष्णु दे रूप अवतार ला करके किशन दे रूप विच आए सन और आखिरी समय उन्होंने जिहड़ा चोला छड़िया सी उस बाली दा उस वक्त तो पील दे रूप विच सी, उसने उन्हां दे पैर दे विच पदम सी, सूर्य दी किरणा जिहड़ियां सन रिफलैक्ट कर रही सन, उसने समझा हिरण दी अख है और उसने निशाना लगा करके तीर छोड़िया, तीर जहर दा बुझा होया सी, ओ उन्हां दे पैर दे विच उस पदम विच लगा और अखीर उन्हां नूं उस कर्म दा भुगतान देना पिया। इस तो विचार करके देख लो, सारा जगत उस राम दी पूजा कर रहा है, अगर ओ भी कीती गई किरिया तो उस दे भुगतान तो बच नहीं सके फिर असी कैसा अहंकार ला करके बैठे हैं। सतगुरु जी का सतगुरु तो असी समझ ही नहीं सके, सतगुरु सेव सदा फल पाए, ये केड़ा फल है और कैसी सेवा है, सतगुरु किसनु किया जा रहा है और ये जन्म मरण की मैल किस तरीके दे नाल कट्टी जा सकती है। असी बहुत सारे परमा दे विच फसे हुए हैं, असी आकार नु सतगुरु समझ रहे हैं, आकार कोई सतगुरु नहीं है, एक मीडियम है, एक साधन है, एक पौड़ी है, इसका असी फायदा चुकना है। पौड़ी के उपर खड़ा रह करके कोई भी छत तक नहीं पहुंच सकता, हाँ पौड़ी का फायदा चुक सकता है, बाकी दिया पौड़ियां चढ़ सकता है, एक पौड़ी चढ़ के दूसरी तीसरी फिर उसनू छत जरूर मिल जाती है। सो सतगुरु जो है वह शब्द है, शब्द नू असी समझ नहीं सके, किसी ने गुरमुखी दे लफ्जा नू शब्द कहता नाम कहता, विचार करके देखो ये शब्द जो सारी धरती आकाश नू अनंत मंडलां नू बनाण वाला है वह कोई लफज किस तरीके दे नाल हो सकता है। अगर कुछ लफज जड़े असी लै करके अहंकार दे विच बैठे हाँ असी नाम लै लिया, तो विचार करके देखो गुरु ग्रंथ साहब दे विच 1430 पन्ने ने और इहदे विच हजारां ही अक्षर जड़े ने मौजूद ने, क्या यह सचखंड की बाणी नहीं सी, क्या यह सचखंड का दिता है नाम नहीं सी, यह किन्हां ने उच्चारण किया सी, पूरन सतगुरां दे कट दे विचों उत्पन्न हुईयां वह सचखंड की ताकत और तरंगा सन जिहड़ियां लफज बन करके साडे कन्नां नाल टकराईयां और असी उन्हां दा संकलन कर लिया, उसके ग्रंथ बन गया, पोथी बन गई, तो क्या वह नाम नहीं है, अगर वह नाम सी तो फिर क्या वह नाम थुड़ गया सी, उसकी ताकत घट गई सी, तो सानू होर नाम की जरूरत पै गई, विचार कर लेना चाहिए। यह मजमून जड़ा है यह भेड़ चाल का मजमून नहीं है, असी भेड़ चाल के रूप दे विच इस सत्संग नू या इस किरिया नू रूहानियत दी नू अपना करके बैठे हाँ, और भेड़ चाल दे विच उसका सब तो गिरिया या रूप की हुंदा, पहली भेड़ कित्थे गई यह कोई विचार नहीं करता, ठीक उस तरीके दे नाल लैन लगी हुई है, किसी नू यह विचार करन दी सोचन दी फुरसत नहीं है कि अगे वालियां दा की बनिया, अगर नहीं बनिया तो कारण की सी, उस कारण नू सोचन लई किसी को समय नहीं है, भीड़ इकट्ठी है, भीड़ नू देख करके भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कोई यह विचार नहीं करता कि पहली भीड़ का की बनिया और की हो रहा की असर है, काल बड़ी सूक्ष्म और चलाकी दे नाल इस रचना नू चला रहा, असी जिस पासे भी जाते हैं अगर वह सतगुरु वाला रस्ता है रूहानियत का रस्ता है तो बहुत ही सूक्ष्म रूप दे विच उन्हां दे बचनां नू लै करके उन्हां दी दित्तियां या दातां नू लै करके उन्हां दे कीते हुए सत्संगां दे विच उन्हां दीआं तुकां नू लै करके ऐसा भरम फैला दिंदा कि यह जीवात्मा फिर भरम दे विच आ जाती है, यानी कि वह ग्रंथ साहब दे विच जो कुछ भी लिखा गया वह सारा नाम है, अखरी नाम है, सचखंड तो ही दिता गया सी और असी भी अखरी नाम नू लै करके बैठे हाँ, अगर असी अज यह कहंदे हाँ कि यह ग्रंथ साहब के लफज जड़े ने सानू पार नहीं ले जा सकते, ये अखरी नाम है, आत्मा के बोझ नू नहीं चुक सकते, सतगुरु की लोड़ है, तो विचार करके देख लो सतगुरु की लोड़ उन्हां नू भी है जिहड़ा लफज लै करके असी बैठे हाँ, बेशक सतगुरां ने दिता है तो वह लफज जड़े सन वह भी सतगुरां ने दिते हुए ने जिहड़े ग्रंथ साहब के भी दर्द ने, अगर वह नहीं ले जा सकते तो यह भी नहीं ले जा सकते, ये विचार करने वाली गल है, ले जाने वाली ताकत केड़ी है, उसी नू नाम किया है, उसी नू शब्द किया है, उसी नू कीर्तन किया है, ये जन्म जन्म की जड़ी मल है ना, ये मल केड़ी है, जो जीवात्मा मनुख जन्म च आकर के किरिया अपनांदी है ना, कोई किरिया बेशक सतगुरु दे मुतलक है, बेशक उस सेवा है शरीरिक रूप दे विच, अगर उस दे विच इच्छा है कामना है स्वार्थ है तो यह जन्म जन्मांतरा की मैल है, यह मल है जिहड़ी जीवात्मा ने एकत्रित की है अनंत काल तो। उसने कोई यह भी नहीं पता कि कितनिया चौरासियां कट चुकी है, कितने वेरी मनुखे जन्म च आ चुकी है और कितनी वेरी उसने सतगुरां दे मतलब एहो जिया किरिया अपनाईया ने जिहड़िया जीवात्मा नूं बाहर दियां बाहर ही रखदे। असीं अनंत काल तो उही काम करदे आ जिहड़ा कि बाहर रहे। बाहर कौन है? बाहर मन है। मन सानू बाहर लै जांदा, बाहर घुमांदा है और असी बाहर दे बाहर रह जांदे। सतगुरु नूं शब्द नहीं समझिया, असी उन्हूं आकार समझ लिया और आकार तक ही सीमित रह गए। आकारां नूं दर्शन नूं ही मुक्ति समझ ली। सारिया के फल हैगे ने ते सूक्ष्म रूप दे विच असी अंतर दे विच कोई ख्याल करदे आ उसका भुगतान अगर काल सानू दिंदा है तो सतगुरां दे दर्शन का भुगतान नहीं देगा? जरूर देगा। यह सारे फल ऐसे ने जिहड़े सानू पार नहीं ले जा सकते। पार ले जाने वाले जिहड़े दर्शन ने जिस दे विच मुक्ति है वह सारा मजबूत जिहड़ा रूहानियत का अंतर दे विच है। जब तक असीं बाहरों नहीं निकलांगे अंतर जा ही नहीं सकते। असीं अगर अख बंद करके बैठ जाइए और कई असीं तीसरे तिल ते आकर के बैठ गए हैं तो यह भी एक बहुत वड्डा भ्रम है। ख्याल कित्थे है? ताकत कित्थे है? आत्मा कित्थे है? मन दे नाल, मन दे चुंगल दे विच है, मन ने फसा करके रखी है। फिर सतसंग जी मन कित्थे है? मन तो युगा युगांतरा तो बाहर भ्रमण कर रहा है, सत समुंदर पार है और विचार करके देखो अगर वह बाहर है तो जड़ी वस्तु उसके अधीन है जिसनों उसने वस विच कीता है वह अंतर दे विच किस तरीके दे नाल एकत्रित हो सकती है? कितना वड्डा फर्म पैलिया है कि असी लफ्जा नूं जपांगे तो यह सुरत इकट्ठी हो जाएगी। यह कभी हो सकती नहीं लफ्जा नूं जप करके। इंद्री दे जप दे नाल कभी सुरत इकट्ठी नहीं होगी। असी मजबूत नहीं समझा। कारण की सी? जपाना किदों सी? मन नूं सी। मन नूं बिठाना सीगा। मन अंदर आएगा तो आत्मा अपने आप ही अंदर आ जाएगी। अपने आप ही अंदर आएगी तो प्रकाश और नाम पहले तो ही अंदर आ गया। जिसनों नाम कहा गया वो एक आवाज है परमात्मा की, जिसने सचखंड से गुरु साहब ने हक की आवाज कह करके पुकारिया। उस हक की आवाज दे विच एक प्रकाश भी है, यानी कि यह प्रकाश और आवाज बार सारे जड़ चेतन सब नूं आधार दे रहा है। आत्मा भी इस नाम दे उपर टिकी हुई है। जितनिया जड़ वस्तुआं नजर आ रही ये सारिया दे अंदर जीवात्मा मौजूद ने। को अपनी अपनी अवस्था है, कोई गुप्त अवस्था है, कोई सुप्त अवस्था दे विच है। जो जो ये तरक्की करती हुई मनुखे जन्म में आती है ता ही जा करके ये पांच तत्व इस नूं पंजवां तत्व आकाश तत्व यानी कि बुद्धि सोझी की प्राप्ति होंदी है। बुद्धि किस वास्ते मिलती है? अपने घर का काम करने वास्ते, अपने रस्ते नूं तय करने वास्ते मिलती है। इन चक्रां दे विच बाहर फसण वास्ते नहीं मिलती। पर असी की है, असी मन तो इस आत्मा नूं छुड़ाने की कोई कोशिश ही नहीं करते। अस मन की करता बहुत चतुराई दे नाल, काल का अंश है, काल का रूप है, पूरी ताकत इस वक्त इस मन दे अंदर मौजूद है। पिछले युगा दे विच ते अवतार ला करके काल दी ताकत जो है प्रदर्शित की जाती सी। मौजूदा कोर कालयुग दे विच हर मन जड़ा है काल दी पूरी ताकत अवतार ला करके मौजूद है और हर जीवात्मा दे नाल ए अवतार मौजूद है और इसने इस जीवात्मा नूं परमा करके रखा है। यानी कि अंदर नहीं जाएगा किसी भी कीमत ते और उसनों लड़न दे नाल असी उस दे नाल लड़ाई नहीं करते, उसनों अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करते। तो इंद्री दे जप दे नाल ते अज तक किसी नूं कुछ नहीं मिलिया। विचार करके देखो सारी बाणी दे विच जप तप तीरथ व्रत नेम जो भी किया जप की है सिमरन ही तो है। अगर उस जप दे नाल नहीं मिल सकया तो क्या लफज बदल दे नाल अगर सिमरन कह देवांगे तो उसके नाल मिल जाएगा? असली भाव की सीगा कि गुरु साहबां ने सानू एक निशान दिता। एक निशान की सीगा कि इस निशान दे नाल जुड़ जाइए। जुड़ना किसने सीगा? मन ने जुड़ना सी। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसका रूप है, उसके भी सारे गुण जड़े ने पहले तो ही मौजूद ने। उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं, कोई कटार नहीं, कोई जमा नहीं। उसके ऊपर किसी भी ताकत का कोई प्रभाव पै सकता ही नहीं। अनंत काल तो वह परमात्मा का गुण समुन्द्र की बूंद अपनी पूरी ताकत ला करके अंतर के विच मौजूद है। और सिर्फ समझण वाली गल है कि मनुखे जन्म के जो असी इच्छा और कामना नूं ला करके इस क्रिया नूं धारण करदे आ बेशक सतगुरां दे मतलब असीं धारण करदे आ अगर इच्छा रख ली है तो इच्छा पूर्ण होएगी, अवश्य पूर्ण होएगी। काल दी लीला दा एक बहुत ही सूक्ष्म भेद है सतगुरु अज प्रगट कर रहे ने। बहुत ही गहरे भेद इस काल ने इस जगत दे विच प्रचारित किए गए ने। विचार करके देखो असी जड़ वस्तुआं दे अगे, पोथियां दे अगे, मूर्तियां दे अगे, होर ते होर चेतन दे अगे यानी कि पूर्ण सतगुरां दे अगे रोंदे बिलखदे बिलांदे आ किस वास्ते? अपनी इच्छा और कामना नूं पूर्ण करन वास्ते। एक गल नूं हमेशा ही चेता रखो, जो कुछ निश्चित है वह निश्चित है, उसनूं कोई बदल नहीं सकता। और जो कुछ असी चाहते हैं साढ़े अंदर ताकत नहीं है कि वह चीज हो जाए। जब दोनों ही गल्लां अपनी जगह निश्चित और अटल ने तो फिर असी रोक लाभ किस ले रहे हैं? यह मन की एक बड़ी सूक्ष्म चाल है किस तरीके दे नाल वह इच्छा और कामना नूं पैदा करता है। और उसके नाल ही यह बड़ा गहरा भेद है कि अगर ख्याल के रूप के विच भी वाणी स्पष्ट कर दिया, निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, एक कड़ी रस मांडे फिर बोर बोर पछतावे। एक कड़ी दे, एक कड़ी सिमरण की किसनू कहंदे ने, यानी कि मन ने अगर अंतर दे विच ख्याल रूप दे विच भी भोग कर लिया इस जगत दे विच, स्त्री ने पुरुष या पुरुष ने स्त्री का, तो विचार कर दे एक करोड़ दिन यानी कि 27,000 साल एक निमक कड़ी स्वाद का फल मिलता है, तपदे थंबा दे नाल इस जीवात्मा नूं नरक दे विच चिपकाया जांदा। यानी कि सूक्ष्म तो सूक्ष्म रूप दे विच मन ने एक कामना कीती, एक भोग कीता इस संसार दा, तो उसका भुगतान उस काल ने उसनूं 27,000 साल दिते। तो विचार करके देख लो अगर अंतर दे विच या जुबान दे नाल असीं पूर्ण सतगुरु या ग्रंथ पोथी या मूर्ति दे अगे किसी इच्छा नूं जाहिर करांगे, कामना नूं जाहिर करांगे, तो क्या वह पूरी नहीं होगी? ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਚਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੇ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰ, खाना पीना पहनना मन की खुशी खवार। असि जो कुछ भी किरिया कर रहे हैं सवेर तो शाम तक विचार करके देखो किस दे हुकम दे नाल कर रहे हैं, मन दे हुकम दे नाल। मन है विरोधी ताकत, यानी कि काल दा अंश है। बड़ी चतुराई दे नाल एक कामना और इच्छा नूं लै करके खाना पीना और पहनना, इस तो अलावा असि कुछ होर भी करते हैं। अगर सतगुरां दे कोल जा करके शरीरिक रूप की कुछ किरिया असि अपना भी लैंदे हां, तो उसके पिछे बड़ी चलाकी दे नाल इस मन ने अपनियां कुछ ना कुछ स्वार्थ हेतु इच्छा रखिया ने, कुछ कामना रखिया ने, चाहे किसी भी तरीके दियां ने। और ये सारी डे बुक ये जीवात्मा खुद ही लिखती है। और विचार करके देख लो ये कदी भी कीती गई इच्छा खाली नहीं जाती। इस जन्म दे विच अगर साड़ी इच्छा पूरी नहीं होएगी तो अगले जन्म च होएगी। काल तो चाहता ही यही है कि तुसी कोई इच्छा पैदा करो, अपने मुखार बिंचो उच्चारण ते करो कि मैनू यह वस्तु सा संबंध चाहिदा है। बड़ी चलाकी और खूबसूरती दे नाल उसनू लिख लैंदा है और तुहाडा जन्म पक्का हो गया। यानी कि तुसी इच्छा कीती नहीं कि जन्म अपना खुद ही पक्का कर लिया, आपे बीज आपे ही खाओ। ऐसी दिन रात मनुखे जन्म दे विच आकर के इच्छा और संबंधा दे बीज बो रहे हैं। ये बीज सा संगत जी खाएगा कौन? क्या सतगुरु आकर के इस फसल नु कटणगे? नहीं, ये मनुखे जन्म दे विच जीवात्मा नु ही आकर के कटने पैंदे ने। और अगर निचला बीज बो देगा, किसी का हक मार लेगा, किसी के नाल चोरी निंदा चुगली कर लेगा, तो निचले जामिया चला जाएगा। कोई ऐसी अवस होगी काम दे मतलब बच्चे दे मतलब, तो होर निचलिया श्रेणिया चला जाएगा। उतली दान पुन बहुत सारे करेगा तो देवी देवत्या दी जून भी चला जाएगा। यानी कि आपे बीज खाओ दी गल जड़ी है, ये बीज आप ही बोया तो तेनू आप ही खाना पेगा। फिर कैसा अहंकार ला करके असि बैठे हैं कि असि लै आए हैं, असि पार हो जावांगे, असि सतगुरु वाले हाँ। सतगुरु वाले तो तां होई है जे सतगुरु दे नाल मिल चुके हुई है। असि मिले हुए मन दे नाल, मन दे हुक्म दे उपर कुर्बान है, मन दे कीते ते खाना पीना खुशी खवार खुशी इस नूं खुश कर रहे हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਹੈ ਵਪਾਰ, ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘਸੀਟੀ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਸਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੋ ਪੈਰ ਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੱਤ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਾਏ ਖਸਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਫਲ ਉਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤੀਵਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ? ਪਤੀ ਖਸਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਨਿਚਲੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾ ਔਰ ਸਵਾਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੱਟਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਤੱਤ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੜ ਚੇਤਨ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਵਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਚਾਵ ਹੈ, ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਿਚਾਵ ਤੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਨ ਦੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਨ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਿੱਚਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੁਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੁਭਾਵਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੱਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹਰ ਪੜੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ चार जन्मां च कोई लै जांदा, छह जन्मां च लै जांदा, इह तां जन्म जन्मांतरां दी किरिया। अनंत काल तो जदों भी मनुख जन्म च आई जीवात्मा, उसने कोई ना कोई किरिया अपनाई और उस किरिया दे विच कामना और इच्छा लै करके उसनूं भुगतान देने वास्ते जन्म दिते गए। इसे तरीके दे नाल इह किरिया चलती आ रही है। जदों भी मनुख जन्म च आंदी है पिछला भुगतान देंदी है, अगला बीज भी ऐसा बो देंदी है कामना दे रहित कि वह काल नोट कर लैंदा और उसनूं फिर जो है मनुख जन्म दे विच नितले जां उतले जामिया दे विच भेज देंदा। इस किरिया च असीं निकल ही नहीं सके, इस मजमून नूं असीं समझ नहीं सके। तो फिर जो कुछ असीं इच्छा और कामना लै करके इस मनुख जन्म दे एकत्रित कीता है, तो असी किस तरीके दे नाल सतगुरु दे कोल जा सकते हैं, किस तरीके दे नाल परमात्मा नूं मिल सकते हैं। असी जा ते रहे हैं दूर, पर समझ करके बैठे हैं कि असी परमात्मा दे कोल हैं। मरण दे बाद सतगुरु सानूं लै जाणगे, जरूर लैण वास्ते ही आए ने, पर मुर्दियां नूं लैण वास्ते नहीं आए, जिंदे जी मुर्दा बनाने वास्ते आए ने। जिंदे जी जिहड़े मुर्दा बन जांदे ने उन्हां नूं सचमुच लै जांदे ने। मुर्दा तां ही बणांगे जदों इह मन वापस आएगा अपने घर। घर कित्थे है? इहदा ब्रह्म दा घर है, दोनों अखां दे पिछे इसकी बैठक है। इस जगह तो उतर करके नौ द्वारा दे जरिए बाहर भ्रमण करदा है और इंद्रिया दे वस होकर के जड़ी इंद्री चाहती है जिस घाट ते इसनूं खिच करके लै जांदी है। इस तरीके दे नाल ए आत्मा जड़ी है इसके अधीन होकर के उसकी मिट्टी पलीत की गई है। तो विचार करके देख लो क्या लफ्जा के जप दे नाल या ग्रंथा पोथियां नूं मत्थे टेकण दे नाल क्या इस तरीके दे नाल इस आत्मा का उद्धार हो जाएगा। अज तक असी भ्रम दे विच रहे हैं, अनंत काल तो यह रचना चल रही है। असी अपने घर नहीं जा सके, सचखंड नहीं पहुंच सके, तो विचार कर दो कारण की सीगा। भ्रम इको ही भ्रम सीगा, उस भ्रम चो असी निकल नहीं सके। उस भ्रम चो कढ़ण वाली ताकत कौन है? गुरु, सतगुरु, वाहिगुरु। यह सब अंधकार है, जितना अंतर दे विच अंधकार है उस तो कणा अंधकार बाहर है। असी बाहर सूरज की रोशनी च काम करते हैं और अपने आप नूं बहुत उच्चा समझते हैं कि साडे बाहर प्रकाश ही प्रकाश है। कोई भी जीवात्मा यह जीवात्मा नूं खाए बिना जिंदा रह ही नहीं कर सकती। जेते दाने अन्न के जिया बाज ने, कोई ऐसा अनाज का दाना नहीं जिसके अंदर जीवात्मा नहीं। असी कहते हैं मांस खाना छड़दा, इंसान का मांस खाना, इंसान का खून पीना असी अज तक नहीं छड़ सके। किसी का हक मारना नहीं छड़िया। विचार करके देखो जिस पेट तो असी जन्म लिया है, अपने भैणा भरावां नूं जिन्हां ने उसी पेट तो जन्म लिया उन्हां दा हक मार करके खा जांदे आ, किस तरीके दे नाल उन्हां दा ऐसा व्यवहार करदे आ कि उन्हां नूं दर दर दीआं ठोकरां खाण वास्ते मजबूर होना पैंदा है। तो ऐसी किरिया नूं अपनाण करन दे बाद उस तों बाद वी असीं समझ करके बैठे हां कि असीं सचखंड चले जावांगे, अपने घर चले जावांगे, सानूं कोई पुछण वाला नहीं, सानूं लेखा नहीं देना पवेगा। और तीसरी अख काल दी जड़ी है ना, बड़ी चतुराई दे नाल इस जीवात्मा दे उपर नजर रख करके बैठी है। मन दे नाल जड़ी भी किरिया करदी है उसनूं नोट कर लैंदी है, जो मंग करदी है उसनूं भी नोट कर लैंदी और बड़ी चतुराई दे नाल इस जगत दे विच फसाण दा उसने ऐसा महीन जाल बुन रखा कि इस जाल बरीक तो बरीक मछली भी निकल सकती। असि तो बहुत वड्डे वड्डे मगरमच्छ बनी बैठे हैं, इस जाल चो किस तरीके दे नाल निकल जावांगे? कौन सानू कढ़ेगा? जिन्हां नूं असि समझ करके बैठे हैं ये तां ही कढ़णगे जिस तरीके दे नाल लकड़ चो अग प्रगट हो जाती है। जब तक असि अंतर दे विच अपने सतगुरु नूं उस परमात्मा नूं प्रगट नहीं कर लैंदे तद तक असि उन्हां तो फायदा चुक सकते ही नहीं। लकड़ कोल अग का काम लैना है, सतगुरु कोलों सतगुरु का काम लैना है, शब्द का काम लैना है, तो उसनूं अपने अंतर प्रगट करो। अंतर ही प्रगट तां होणगे, अंतर दे विच मौजूद ने हर पल हर कड़ी शब्द तुनकारे दे रहा। शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है, होर कुछ भी नहीं हैगा। और वो अंतर दे विच हर पल साडे आण तो पहले तो ही मौजूद है। इस जगत दे विच सारी रचना नूं बनाण वाला ही ये शब्द है, आधार देण वाला ही है। और जिसले रचना खत्म हो जाएगी परले महापरले दे बाद, उसके बाद भी शब्द ने रहना है। शब्द परमात्मा दा अंश, उसका एक गुण है, उसी नूं नाम और शब्द कह करके पुकारे। इस करके विचार करके देख लो, सतगुरु तो पहले तो मौजूद ने, पर यह रस्ता जड़ा त्रिकुटी का नौ द्वारियां नूं पार करन दा, दसवें द्वार दो आखां दे पिछे आग्या चक्र जिसनूं किया जांदा, जब तक जीवात्मा उस जगह पहुंचेगी नहीं तब तक सतगुरु का समझ लो कि सानू कख भी फायदा नहीं हो सकता। अज तक कुछ होया नहीं होया। जिन्हां दाता नूं असीं दात समझ रहे साध संगत जी, ये दाने भुजे जिहड़े असीं खा रहे हैं ना, बेशक सतगुरां कोल ला करके मंग करके खाइए या मूर्तियां पोथियां कोल मंग करके खाइए, देण वाली ताकत और काल मौजूद है। सतगुरु भी देणगे तो भुगतान कौन देगा? एक पास तो तुहानूं दात देण, दूसरे पास साडा भुगतान करन वास्ते। फिर यह गुम उतर दीआं थैलियां दे विच आणगे। विचार करके देख लो, सानू ही इन्हां थैलियां दे विच आणा पैणा ने उतले जां निचले जामिआं विच। जितनियां भी असीं किरिआ अपना रखियां, जितने भी दाणे खा रहे, साडीआं लिस्टां ही खत्म नहीं हो रहीआं। कितनियां फरियादां असीं करदे आं अनंत काल तो जदों भी असीं मनुख जन्म दे विच आए, साडीआं कीमतां खत्म नहीं होईआं, फरियादां खत्म नहीं होईआं। इह लिस्टां लंबीआं तो लंबीआं हुंदीआं जा रहीआं ने। इह लिस्टां अज तक अगर पूरीआं नहीं होईआं तो किहड़े भ्रम च बैठे आ कि अगले युगां च पूरीआं हो जाणगीआं? किसी नूं धीआं पुत्तर दे विआह दा ख्याल है, किसी नूं नौकरियां दा ख्याल है। विचार करके देखो जो कुछ पिछले जन्मां च असीं कीता ओह अज भुगतान कर रहे हैं, ते पहले तो ही निश्चित है और निश्चित नूं कोई बदल नहीं सकदा। भगवान श्री रामकंदर जी नूं असीं भगवान समझदे हैं, उन्हां दे पिता दशरथ जी दा उन्हां दा असर देख लो। अंतकाल दे जितने यग उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच कीते सी, असीं करोड़ जन्म इंसान दे लै करके उतने यग नहीं कर सकते, ते फिर उन्हां दा फल किधर चला गया? अंत दे विच उन्हां नूं किस तरीके दे नाल तड़फ तड़फ कर पुत्तर दे वियोग दे विच जान देनी पई, यानी कि उन्हां नूं भुगतान देना गया। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास कटने पे, क्यों कटने पे? ये पिछले जन्मों के सब भुगतान सन जिहड़े कि इस जन्म दे विच किसी भी तरीके का क्रिया कर्म करन दे बाद असीं छुट नहीं सकते। कल्पा तक यह जीवात्मा नरकां दे विच सड़दी है और सतगुरु ही इस जीवात्मा नूं नरकां चों कढ करके दात देंदे ने, दान देंदे ने। किहड़ा इह मनुखे चोले दा उस दान दा असीं की फायदा चुकिया जे असीं नवें दान की गल करन लग पे? अगर असीं इस दान नूं दान समझ लिया हुंदा ना, तो सतगुरु अंदर दे विच बहुत पहले प्रगट हो चुके होंगे और सानू इस जगत तो कट के जिंदे जी मुर्दा बना करके ले जा चुके होंगे। पर असीं कदी उस दान नूं समझे ही नहीं, कदी इस मनुखे चोले दी खुद भंडार की कीमत जान करके देखी है? हाथ पैर नक कन्न मुंह विचार करके देखो, ये तो अगर एक आधा हिस्सा ना भी हो तो असीं काम किसी तरीके नाल चला लांगे, पर अगर असीं इस जन्म तो बिछड़ गए, किसी निचले या उतले जामे चले गए, तो परमात्मा नूं कदों और किस लोक किस युग दे विच जा करके असीं प्राप्त कर लवांगे? यानी कि एक ऐसा वड्डा सृष्टि का सिरमोर इस मनुखे जन्म नूं असीं प्राप्त कर चुके हां। परमात्मा बनन दा अधिकार सानूं मिल चुका है, मिलन दा नहीं, असीं परमात्मा बनन वास्ते इंसानी जन्म दे विच आए हां। परमात्मा दा ही रूप है इंसानी जन्म जड़ा है, तो असीं उस नूं किस तरीके दे नाल खज्जल कर रहे हैं? इंद्रियां दे विकारां दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसे ऐसे भयानक विकार और ख्याल असीं अंतर दे विच एकत्रित कर रहे हैं। जरा विचार करके देखो कि असीं कैसी कैसी प्लानिंग बना करके लोगों का हक मारते हैं, जिसनूं असीं व्यापार कहिंदे हां। व्यापार क्या? लोगों के हक नूं मारना व्यापार किया जाता? मुल्क दे मुल्क लाशां दे ढेर बढ़ा देने ये मुल्कां दा व्यापार किया जाता? सारी सृष्टि अंधकार दे विच गर्क हो रही है। इस वक्त असीं इस कलयुग आखिरी पड़ाव दे विच आखिरी समय दे विच मौजूद हां। इस वक्त भी जड़ी जीवात्मा नहीं चेती अपने सतगुरु नूं प्राप्त ना कर सकी, ए लकड़ अंदर दे विच अग ना प्रगट कर सकी, तो उस दे उपर रोटी नहीं पक सकदी, यानी कि नाम प्रगट नहीं हो सकता, शब्द नहीं मिल सकता। और जिस नूं असीं नाम या शब्द समझ करके बैठे हैं, उस नूं जपण वास्ते एक जीवात्मा की लोड़ है, एक चेतन सत्ता की लोड़ है। अगर यह चेतन सत्ता ना है तो लफज अपने आप दे विच मुड़दे ने। जड़ प्रकृति नाल संबंध रखने वाली वस्तु इस जीवात्मा के बोझ नूं चुक करके पार ब्रह्म सचखंड नहीं पहुंचा सकती। सचखंड ले जाने वाला जो शब्द है, नाम है, वह मनुखे जन्म की दोनों अखा के पिछे अंतर दे विच दिन रात चुम चुम वरसे अमृत धारा मन पीवे। मन ही ने पीना है, जब तक मन असीं अंदर नहीं लगावांगे आत्मा अंदर जा ही नहीं सकती। फिर किस तरीके दे नाल असीं भजन कर रहे हैं? ना सानू भजन की डेफिनेशन का पता, ना सतगुरु की डेफिनेशन का, ना नाम की डेफिनेशन का। बाहर दी डेफिनेशन असीं गलत कढ़ लईआं, ते अंदर की डेफिनेशन कदों किस युग दे विच प्राप्त कर सकांगे? तो बाणी दे विच सतगुरां ने सारे भेद जड़े ने बचे अच्छे तरीके दे नाल प्रगट कीते ने। इस शब्द दे विच भी सारे भ्रम जड़े ने गुरु साहब अज दूर कर रहे ने। संक्षिप्त रूप दे गुरु साहब ने सारा भेद दे दिता कि वह नाम जड़ा है, वह फल जड़ा है, वह ताही प्राप्त होता है जो सतगुरु की सेवा करिए। और सतगुरु अगर शब्द है तो शब्द की सेवा सिर्फ सुरत कर सकती है, ख्याल कर सकता है, आत्मा कर सकती है, और कोई भी उस शब्द की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उस शब्द में वह देख ही नहीं सकता। आत्मा की ताकत है सुरत और निरत की, देखने की और सुनने की, यही देखती है उस शब्द को, यही सुनती है, और यही उसकी सेवा है। और इसी सेवा वास्ते ही ए मनुखा जन्म सृष्टि का सुरमोर इस जीवात्मा नू दान दे रूप दे विच अकाल पुरख दे हुकम दे नाल सतगुरु दे जरिए दिता गया, इसकी झोली तकसीम किया गया। और असि यह सारा जन्म जड़ा है मनुखा जन्म काल दे मूह दे विच, यानी कि मन दे हुकम कुर्बान कर रहे हैं, और दिन रात हर पल हर कड़ी काल दे मूह दे विच ही अपना कारनू जो है पक्का कर रहे हैं। इस तरीके दे नाल जन्म जन्मांतरा दी जड़ी मैल है, जड़ी असीं एकत्रित कीती है कामना और इच्छा दी, कदे भी नहीं धुल सकती। क्यों? जड़े कि पिछले जन्मां च असीं कामना कीती या हुण भी कीती है, वह काल पुरुष दे कोल नोट कीती हुई है और उस जरूर पूरी होएगी। कोई रोल पिटण दी गल नहीं है, बार बार कहण दी लोड़ नहीं है। तुसीं एक बार ख्याल कर लो, सानू कार चाहीदी है। कार की तुहानू इस सृष्टि के तीनों लोगों की दौलत देने वास्ते काल कुर्बान है। तुसी उहदे उपर कुर्बान होकर के देखो, जिस तरीके नाल मन पर असीं कुर्बान है, काल भी साडे उपर कुर्बान है। जितनी भी सृष्टि की चमक नजर आ रही है सूक्ष्म और कारण लोगों जिहड़ी जीवात्मा अंतर भी जांदी है, उन्हां नूं पुछ करके देख लो कैसी कैसी लुभावनी रचना इस काल ने रचना की हुई अंतर दे विच। उस रचना दे विच देख करके जीवात्मा कदी पार ही नहीं जा सकती। इस तों विचार करो कि कैसी सुंदर रचना है, ऐसी सुंदर रचना यानी कि कुर्बान है काल इस जीवात्मा दे उपर अगर ए मंग कर दी है, बेशक मन दे रूप दे विच मंग कर दी है, वो कहंदा तू मंग दे सही, मैं तेरे उपर कुर्बान। अगर मंगा असी मंगी जांदे हैं, असी बार बार कहंदे हैं साड़ी दिक्कत कदों आंदी है, असी कहंदे साड़ी मंग हुणे ही पूरी हो जाए, ये भी काल दी चाल है। ये मंग उदों पूरी होंदी है जदों पिछला भुगतान भी चलता रहे और अगला कुछ बच जाए तो तुहानू कुछ जरूर मिल जाएगा, नहीं तो इच्छा तुहाडी नोट कीती गई है अगले जन्म जरूर मिलेगी। सो ए जन्म जन्मांतर दी मैल, ए जन्म जन्मांतर दी मैल तां ही जा सकदी है अगर फल दी प्राप्ति होवे, और फल जड़ा है अंतर दे विच है और बिना सतगुरु दे प्रगट होए अज तक किसी नूं मिलिया नहीं। और सतगुरु कदों देंदे ने, जदों उहनां दी सेवा होवे, यानी कि सुरत शब्द दी सेवा करे, और तां ही करेगी जदों इह नौ द्वारा चों निकल करके अंदर मन पहुंचेगा, और मन जड़ा मन दे अंदर ही ए आत्मा कैद है, और अपने आप ही ए जीवात्मा जो है उस शब्द दे नाल नाम दे नाल जुड़ जाएगी, जो बाद दी चीज सतगुरु जो है ए बाकी दे रस्ते नूं तय करा करके ए जन्म जन्मांतरा दी मैल नूं तो देंदे ने।
पतित पावन प्रभु तेउ नाम, पूरब कर्म लिखे गुण गा।
पतित पावन और पूरब लिखे कर्म, और पूरब लिखे कर्म केड़े सी? पिछले मनुखे जन्म च आकर के जीवात्मा ने जड़ी भी फरियाद कामना इच्छा कीती सी ए पूरब लिखे कर्म हैं। असि बहुत ही गलत अर्थ कढ़दे हां कि पूरब लिखे कर्म का अर्थ ये कढ़दे हां कि परमात्मा ने अकाल पुरख ने साडे खाते दे भी जो कुछ लिख दिता है, बिल्कुल गलत गल है। असली पाप बिल्कुल स्पष्ट है, आपे बीज आपे ही खाओ, कर कर करना लिख ले जाओ। जो कुछ असि करते हैं, जो कुछ इच्छा साडी कामना होंदी है, ये अकाल पुरख नोट करता रहा है, और जो मनुखे जन्म च भेजता है या किसी भी जगह भुगतान वास्ते भेजता है, इन्हां इच्छा और कामना दे विचों ही कुछ कर्म जड़े ने दे करके साडा जन्म हुंदा है। तो पूरब लिखे दा है ए बिल्कुल पहले दियां मंगा और इच्छा जड़ियां ने साडियां कीतियां गियां, और पतित पावन यानी पतित नूं पावन करन वाली जड़ी चीज है ओ अंतर दे विच है, और ओ तां ही प्राप्त हुंदी है जदों असी सतगुरु दी सेवा करिए।
साधु संग होए उधार शोभा पावे प्रभु के द्वार।
साधु संग होए उदार शोभा पाए प्रभु के द्वार। विचार करके देख लो साधु कौन है इस जगत दे विच, भगवे वस्त्रां नूं असीं साधु कह रहे हैं ते ए वी सरकार ने साडे भ्रम पैदा कीता। असली गल की सी कि सतगुरु नूं ही साधु किया गया है, हुण ए साधु सतगुरु कित्थे आ ए विचार कर लैणी चाहीदी कि असल गल ते शब्द है, और असी उहदे बाहरी आकार दे विच फस गए ते इहदे नाल उधार नहीं हो सकदा। सतगुरु दी संगत कह रहे ने, जिसने साधु दी संगत कीती ते उधार हो गया। और शोभा किसनूं प्राप्त होई? आत्मा नूं। कदों प्राप्त होई? जदों ओह सचखंड पहुंच गई। सचखंड पहुंचे बिना इस आत्मा नूं शोभा प्राप्त हो ही नहीं सकदी। इन्हां मुल्कां दे विच जिथे असीं शोभा दी गल कर रहे हैं, इह वस्तुआं और संबंधां नूं लै करके राजपाठ कायम करके असीं सोच रहे हैं कि सानूं शोभा प्राप्त होगी, इह ते साडी मिट्टी पलीत कीती आ रही साडी कोल, यानी कि इह जीवात्मा जिहड़ी है इह मैं जीवात्मा है, आ परमात्मा दा अंश है, इहदी मिट्टी पलीत कीती जा रही है, और इहदी शोभा तदों होएगी जदों इह मन दे चुंगल तों निकल करके सचखंड पहुंच जाएगी। तो गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट उपदेश कर रहे हैं कि साधु की संगत चाहिए है। साधु की संगत जड़ी है वह शरीर रूप दे भी संगत की गल नहीं कर रहे, असं शरीर के बाहरी आकार दे विच फस जाते हैं, बाहरी संगत नूं सब कुछ समझ लैंदे हैं। गुरु साहब पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि अर्थ है, भाव मिलता है, फल मिलता है, पर इतना छोटा है कि जीवात्मा के बोझ नूं चुक करके सचखंड नहीं ले जा सकता। तो इस तो बिल्कुल स्पष्ट है कि संगत केड़ी है? अंतर दी। अगर शब्द कित्थे है? अंतर दे विच। सतगुरु शब्द है, अंतर दे विच है, तो उसकी संगत करन नूं वाले नूं ही उधार हुंदा है, यानी कि आत्मा जो है चढ़ाई करके सचखंड पहुंच सकती है। होर कोई भी कारण नहीं, कोई भी ऐसा मीडियम नहीं, कोई भी ऐसा साधन नहीं कि इस आत्मा नूं जो है मान की प्राप्ति हो जाए। तो बिल्कुल स्पष्ट गल कर रहे हैं कि अंतर दे विच उस परमात्मा की सतगुरु की संगत करनी है, और जिसने अंतर दे विच संगत नहीं की थी, तो जेता जगत संसार डिठिया मुक्त ना हो। बिल्कुल स्पष्ट गल करते हैं कि सतगुरु नु सब को वेखदा जेता जगत संसार, यानी कि इस सतगुरु नु जदो भी मनुखे जन्म दे विच जन जिस घट दे विच परमात्मा की ताकत प्रगट हुई है, सारी जड़ और चेतन वस्तुआ संबंध देख ही रहे ने। कहंदे ने देखण दे नाल मुक्ति नहीं होंदी जिस चर शब्द ना करे विचार। हुण शब्द केड़ा सीगा? जिहड़े सतगुरु सचखंड तों आ करके इस जगत दे विच उस ताकत दे नाल सत कम करदे ने ना, सतसंग दे विच जो कुछ उपदेश देंदे ने, जो निर्देश देंदे ने, इह है शब्द। और इसका विचार की है? इस शब्द नूं धारण कर लैणा। अगर असी इस मनुखे जन्म दे विच आ करके सत्संग जो भी उपदेश दिता गया उस नूं अगर असी धारण कर लिया तो यह नाम दा जप भी हो गया, नाम नूं धारण भी कर लिया, शब्द की विचार भी हो गई, तो गुरु साहब कहंदे ने यह सतगुरु की संगत भी हो गई, साधु की संगत भी हो गई। और यही संगत है जिहड़ी जीवात्मा नूं अंतर दे विच इस काबल बना दिंदी है कि जीवात्मा बाकी दे मंडलां नूं पार करदी होई सचखंड पहुंच सके। जपजी साहब विच बिल्कुल पंजो मंडलां नूं स्पष्ट रूप विच किया गया, सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल। बिल्कुल स्पष्ट गल है कि उन्हां दा यह भाव नहीं सी कि उन्होंने सचखंड गए तो उन्होंने देख करके उच्चारण कर दिता तो तुसीं भी उच्चारण कर दो। उन्हां दा भाव सी कि सचमुच यह गल है वे तो तुसीं इस गल नूं प्राप्त करना, तुसीं भी सचखंड जाना, तुहाडा भी अपना घर जिहड़ा है यह जीवात्मा सचखंड तो ही आई है, सचखंड ही इसका घर हैगा और दोबारा इसने उत्थे ही जाना। और जब तक यह उदम नहीं करेगी, साधु का संग नहीं करेगी, शब्द उपर विचार नहीं करेगी तो देखण दे नाल मुक्ति नहीं हो सकती, यानी कि जीवात्मा चढ़ाई नहीं कर सकती। जिसे दिन रात दर्शन करते ने यानी कि जिस घट दे विच यह परमात्मा यानी कि सतगुरु मौजूद है उन्हां दे पेट दे विच भी कईयां ने जन्म लिया और उन्होंने भी किसी पेट दे विचों जन्म लिया। गुरु नानक साहब के मुंह से चपेड़ा ही पैंदियां रहियां, पिता कालू अखीर तक एको ही वचन करते रहे कि नानक कदों कमाण लगेगा, यानी कि जिस घट दे विचों परमात्मा प्रगट सीगा उसके घर वालियां नूं भी इस चीज की खबर नहीं सी कि परमात्मा मेरे घर के अंदर मौजूद है और उसकी कमाई नूं ही देखते रहे कदों नानक कमाण लगेगा। अगर उन्होंने उस वक्त सोझी नहीं आई जिस घट दे विच परमात्मा सी ਅੱਜ 500 साल बाद ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। जिसने अग नूं प्रगट कर लिया उसने उहदे कोल तपश दा काम लै लिया, और जिसने अंतर दे विच उस ताकत नूं प्रगट ना कर सकिया ते जिस घट दे विच मौजूद है, जिस घर दे अंदर ओह रहना बहना उसदा है, हर पल हर कड़ी असीं उस नूं देख भी रहे हां पर भी उसदे कोल फल दी प्राप्ति नहीं हो सकदी। फल कहड़ा सी? ओह सुहागण वाला फल, यानी कि ओह बूटा लगना सी जिस नूं नाम किया जांदा, ओह नहीं सी लग सकदा। यानी कि अगले जन्मां च उधार होएगा ते अगले जन्मां दी असीं गल ही नहीं करदे। अनंत काल तो अगले जन्म करी जा रहा, कल किसे दा आया? कल आज तक नहीं आया तो सात संगत जी कल भी नहीं जी आने वाला। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਫੈਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੇ ਪਹਿਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਔਰ ਦੀਨ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦਲਦਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਮੱਖੀ ਬਣੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਦਮ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਮਨ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਏਗੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਨ ਕੈਸਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਤੂਰ ਬਾਛੇ ਸਭ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ,
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਤੂੜ ਬਾਛੇ ਸਭ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਵ ਲੋਕ ਹੀ ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਿਹੜੀ ਆ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੜ ਕੈਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਧੂੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਧੂੜ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਧੂੜ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਚਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਰਾਹਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਆਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਧੂੜ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੌ ਦੁਆਰਾ ਚ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਦੁਆਰਾ ਚ ਫਸੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੌ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੰਧ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੰਧ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਧ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦੁਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸੇ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੂੜ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਡਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਕ ਪੋਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੀ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਉਦਰਿਆ ਸਗਲ ਜਾਨ
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਧੂੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪੀਏ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਇਸ ਤੁਕ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਪ ਨੂੰ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਮਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਪ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦਾ ਜਪ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਟਾਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
ਸ੍ਰੀ ਧਰੇ ਮੋਹਨ ਸਗਲੇ ਉਪਾਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਖਦਾਤਾ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਔਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਔਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਪ ਕੱਟਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਉਹ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਖ ਨੂੰ ਚੱਟਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਔਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਰਿਚਾ ਨੂੰ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਬਿੱਖ ਚੜਦਾ, ਬਿੱਖ ਚੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਔਰ ਉਤਲੇ ਜਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਔਰ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਰੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਜ,
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਜ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਭਜਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਰੇ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਜ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾ